الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا وأشار إلى قلبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم سلام قريب قولي التشريف لها أنا بالكر بيتشات فادة زادة غطاها اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان کے دل میں اور نفس پہ آنے والے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں. انسان کی کوئی شے اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے. یہ انسان ہے جو سمجھتا ہے کہ میں چھپا ہوا ہوں, چھپ کے گناہ کرتا ہے لیکن چھپا ہوا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا عجیب حال ہے, کمرہ بند کر لیتا ہے, کھڑکی پر پردے چلا دیتا ہے, لوٹ کر کے گناہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے, اور اچانک ہوا چلتی ہے اور ہوا چلنے سے جو ڈور ہے وہ ہلتا ہے, ونڈو ہلتی ہے, اور گناہ چھوڑ دیتا ہے کہ شاید کوئی آدمی آ رہا ہے. فرماتے ہیں کیسا بے وقوف آدمی ہے کہ اس آنے والا آدمی جو آپ کے دروازے سے انٹر نہیں ہو سکتا جب تک آپ اوپن نہیں کریں گے, کھڑکی سے نہیں دیکھ سکتا جب تک آپ کھڑکی کو اور ونڈو کو اوپن نہیں کریں گے, اس کے خوف سے تو گناہ چھوڑتا ہے. اور جو ذات یہ کہتی ہے کہ نحن اقرب الی من حبل الورید, ہم شہر سے بھی زیادہ قریب ہے, اس کا اس کو احساس نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی عرش ہمارے سامنے ہے اور ہم شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ شہ رگ یہ ہوتی ہے جس پر انسان کی زندگی کا لائف کا مدار ہوتا ہے, لائف ڈیپینڈ کرتی ہے, اس کو شہ رگ کہتے ہیں. یہ جب کٹ جائے تو بچ نہیں سکتا, اس لیے جانور کی بھی ذبح کے لیے سنتی ہی ذبح کے لیے فرض ہے کہ اس کو کاٹا جائے. اس سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں, اس لیے کہ یہ جو جان روح انسان میں ہے اللہ کے حکم سے کھڑی ہے. یسالون عنی روح قل روح من امر ربی, اللہ کا امر ہے, اس میں سے امر نکل جاتا ہے تو یہ روح انسان کی جسم سے چلی آتی. تو وہ امر روح اور جسم کے درمیان میں ہے. اگر وہ امر بھی اس سے نکل جائے تو جس طرح دو چیزیں سٹک کو کسی شہر سے پیچ سے کس دے اور پیچ سے نکل جائے تو دونوں چیزیں الگ ہو جائیں گی. روح جو جسم کے ساتھ اللہ کے حکم سے کھڑی امر ربی. اس لیے ہمارے استاد محترم حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے, شیخ العدیز بن نوری ٹون کے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے انسانی روح کو خاص شان دی ہے اور روحوں کو نہیں دی, انسان کی روح کو شان دیا ہے امر ربی, اپنے امر کو شامل کیا اس کے اندر. اس لیے انسان کی روح اگر آخرت کی محنت کرتی ہے تو فرشتوں سے آگے چلی جاتی ہے, اور اگر دنیا کی محنت کرتی ہے تو مخلوقات کو حیران کر دیتی ہے کہ یہ انسان کیسا ہے, کہ کیسی کیسی ترقیات اس نے کر لی. اللہ نے انسانی روح میں ایسی استعداد اور قوت اور طاقت رکھی, यही वजह है कि इंसान जमीन पर होता है और वह अर्श तक पहुंच जाता है, बैठा जमीन पर है और आप अर्श वाले से फर्शी होकर अर्शी है, फरिश्ते भी पीछे रह जाते हैं। अल्लाह ताला फखर फरमाते हैं इंसान पर, कितने मकामात पर फरिश्तों से कहते हैं ये देखो ये इंसान है, तुम इसको कहते थे वैसा वैसा है, ये देखो मुझे कैसे राजी कर रहा है, बावजूद इतनी कमजोरियों के, बावजूद इतने मसाइल के, फिर भी मुझे राजी कर रहा है। इंसान का सजदा करना फरिश्ते के सजदे में यही फर्क है कि इंसान जो सजदा करता है तो आसानी से सजदे तक नहीं पहुंचता, फरिश्ते के लिए तो है ही सजदा, उसकी तो खुराक है। जिस तरह मैं और आप ब्रीथ करते हैं तो ब्रीथ में अभी और आपको तकलीफ नहीं होती, फरिश्तों के लिए नेकी ऐसे इंसान के लिए ऐसे नहीं है। बल्कि मैंने एक बात हजरत डॉक्टर अब्दुल इसाव रहमतुल्लाह अलैह से सुनी, फरमाया करते थे लोग फजर की नमाज पढ़ते हैं उस वक्त कोई उसको फिक्र नहीं होती, ना ऑफिस का टाइम है और ना बीवी बच्चों का कोई मुतालबा है, ना शॉप पर जाना है ना मार्केट, तो बड़े सुकून से नमाज पढ़ता है फजर की। कहता जी फजर की नमाज में बहुत मजा आया, बड़ी रूहानियत है। असर की नमाज मार्केट में होता है, शॉप पर होता है, दुकान पर होता है, वहां देखता है कि वो टाइम जा रहा है नमाज का, जमात जा रही, जल्दी से भागा हुआ आता है, जल्दी जल्दी वजू करता है, नमाज में शामिल होता है, और जब नमाज पढ़ लेता तो कहता अल्लाह तेरा शुक्र है, आज तो जमात रह जाती, आज तो मेरी नमाज रह जाती, आज तो ऐसे आदाब थे, इतनी मसरूफियत थी, इतनी बिजी था आज, लेकिन आज अल्लाह ने असर की नमाज में उसे बढ़ा दी। फरमाया कि देखने में उसको फजर में ज्यादा मजा आ रहा था और असर में वैसे मजा नहीं आया, लेकिन अजर के एतबार से ये असर का अजर उसकी फजर से जाता है, इसलिए कि फजर में उसके लिए मजा आ रहा था क्योंकि फिक्र नहीं है, और यहां फिक्रात के साथ उसने नमाज पढ़ी। यही हमारी और फरिश्तों की इबादत में फर्क है कि इंसान जब अल्लाह के दर तक आता है मेहनत करके आता है, आसानी से नहीं आता, शैतान भी खींचने वाला है, कंपनी भी खींचने वाली है, इंसान के नफ्स भी खींचने वाला है, तीनों उसको बुराई की तरफ खींचते हैं, लेकिन उनका मुकाबला करके अल्लाह के दरबार में आता है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हम इस इंसान के शहर से भी ज्यादा उसके करीब है, अपना और बिंदा बताया, लेकिन हम दूर है, हम क्यों दूर है अल्लाह ताला से, हमें वो कुर्ब क्यों फील नहीं होता, हम क्यों महसूस नहीं करते। देखिये बॉडी के एतबार से कुर्ब मुराद नहीं, कि दिल के एतबार से कुर्ब होता है, कुर्ब को दिल महसूस करता है, बॉडी का नहीं, दिल, इंसान का दिल अल्लाह के कुर्ब को महसूस करता है या अल्लाह से दूरी महसूस करता है। अल्लाह रूमी फरमाते हैं कि हम ये क्यों दूर है, फरमाते बाचुनी नजदीकी दौड़ा में दूर, इतनी नजदीकी के बावजूद मैं इतना दूर क्यों, फरमाया कि गुनाहों की वजह से, गुनाह मौला से हमें दूर कर देते हैं। जब इंसान अल्लाह को नाराज करता है, नफ्स और शैतान को खुश करता है, अल्लाह से दूर हो जाता है, अल्लाह तो करीब है, अल्लाह फरमाते हम तो तुम्हारे बहुत करीब है, तुम ही दूर हो जाते हो, हम तो दूर नहीं होते, तुम अगर नफ्स और शैतान को छोड़कर हमारे मुतवज्जे हो जाओ तो ऐसे ही है जैसे मैं बैठा हूं मेरे पीछे कोई हो, अब मुझे क्या पता मेरे कितने करीब है, लेकिन अगर मैं उधर पनस कर देखूं तो मेरे साथ पीछे कोई आदमी खड़ा है, अल्लाह ताला फरमाते हम तो तुम्हारे इतने करीब है, अल्लाह रूमी फरमाते इतनी कुर्ब के बावजूद भी इतनी दूरी हमें क्यों महसूस होती है, इसलिए कि हम अल्लाह को नाराज करते हैं, गुनाह करते हैं, नफ्स को खुश करते हैं। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा था अल्लाह मैं आपके कैसे और करीब आ सकता, वो जब अल्लाह ताला से मुलाकात हुई और अल्लाह का खास कुर्ब महसूस किया और वह बात भी लंबी कर दी, और उन्होंने अजीब बात लिखी है, अल्लाह पूछ रहे मूसा तेरे हाथ में क्या है, तो सीधा साधा जवाब मेरे हाथ में डंडा, लेकिन बात लंबी कर दी। फिर शेख फरमाते थे मोहब्बत की तमीज औलादी नहीं जाती, चांद वापस में चाहता है लंबी बातें करे, इसलिए तो इबादत में आशिकों का दिल इबादत में कुरान मन में क्यों रखता है, स्त्री को पता है कि हम महबूब के साथ मशगूल है, और कौन अपने महबूब से दूरी चाहता है, वो तो जानता है मैं हर बार मशगूल रहा हूं। पहले जमाने में 100 रकात पढ़ लेते थे, 1000 रकात पढ़ लेते थे, पर मैं कोई को इश्क और शौक जो है वो पढ़वा देता था, हम से 2 रकात भी बढ़ जाती। एक पहलवान रेसलिंग करता हो, वो रेसलिंग वाला पहलवान कितना मेहनत करता है, लेकिन 2 रकात पढ़ना उसके लिए मुश्किल है, वो 2 रकात का वजन नहीं उठा सकता। और एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा है, बुजुर्ग है, अल्लाह का आशिक है, उस बुढ़ापे में पता नहीं कितना कुछ इबादत कर जाता है, उससे 2 रकात नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि उसको मोहब्बत नहीं है, इसको मोहब्बत है, उसको महसूस भी नहीं होता। अब्दुल्लाह मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, ताबीन में से है और बहुत बड़े इंसान है, कितने बड़े आदमी थे कि एक साल जहाद में जाते थे और एक साल हज के लिए जाते थे, हजारों शहीद थे। उनकी बड़े अजीब और गरीब वाकयात है, तो किसी के साथ ताल्लुक हो गया, जवान थे, तुर्किस्तान के रहने वाले थे, बुखारा समरकंद के इलाके के, किसी साथ ताल्लुक हो गया, लेकिन नमाज की भी पाबंद थे, अल्लाह के दरबार में भी आते थे। इधर किसी के साथ ताल्लुक हो गया, तो जिसके साथ ताल्लुक हुआ, एक दिन सर्दी का मौसम था, ईशा की नमाज पढ़कर निकले, तो वो ऊपर ये नीचे, तो ये नीचे गली में खड़े हैं, वो ऊपर है, माते कर रहे, सर्दी का मौसम है, उनको सर्दी का भी एहसास नहीं हुआ कि ठंड है, और रात का भी एहसास नहीं हुआ जो इतनी लॉन्ग और इतनी लंबी रात थी, यहां तक कि फजर की अजान हो गई, उनको पता भी नहीं चला। तो हाथ में गैबी से आवाज आई, अब्दुल्लाह जो गैर के लिए सारी रात गुजार देता है, मेरे लिए तेरे पास वक्त नहीं है। बस इस चीज ने ऐसी चोट मारी दिल पर, इसलिए मेरे शेख रोया करते थे शाह की मकसर कि हम लोग जो अल्लाह के तालिब हैं, अल्लाह ने हमें तौफीकात दी है, मस्जिद में आते हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं, नेगी करते हैं, फिर इसके साथ नफ्स और शैतान और मुआशरे को कुछ करें, तो अब बताओ अल्लाह ताला कि कितनी नाशुक्री है कि अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाते हैं, अपने दरबार में ले आते हैं, और फिर उसके साथ हम नफ्स और शैतान को भी खुश करते हैं। इधर है हुस्ने अज़ल पे नजरें, इधर हसीनों को देखता है, इधर चाहता है अल्लाह तेरे हुस्ने अज़ल को मैं चाहता हूँ, तालिब है मौला का, ये सब मस्जिद अनवर मौला के तालिब है, ये नफ्स और शैतान को खुश करता है। इसलिए मौला रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात की है, मौला जनाब रूमी फरमाते हैं कि अगर चमगादड़ जो है ना, चमगादड़ जिसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बैट जो है, वो चमगादड़ जो है, फरमाते हैं अगर चमगादड़ पेशाब खाना चाहते तो उसके जो मुंह से ही वो पेशाब भी करती है, और मुंह से वो आकती भी है, मुंह से खाती भी है, मुझे कोई काम नहीं चमगादड़ पर, मुझे कोई काम नहीं कि अगर वो इसलिए कि उसने सूरज से दुश्मनी की है, वो सूरज को लाइक नहीं करती, सन को, इसलिए वो उल्टी लटकती है, आपको देखा देखेंगे उल्टी लटकती है, इसलिए कि सन के साथ उसकी दुश्मनी है, वो सन को लाइक नहीं करती, वो डार्कनेस को लाइक करती है, तो उसकी सजा ये मिलती है कि वो उल्टी लटकती है, उसी मुंह से खाती है, उसी मुंह से पेशाब करती है। दर खबा शरफ दर गौर कबूल, फरमाया कि अगर चमगादड़ पेशाब खाना चाहते मुझे कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं, लेकिन बादशाह ये दीदरा पारे चबूत, लेकिन ये मास, ये मोमिन बंदा जो अल्लाह ताला की इजाजत करके आसमानों से नीचे आया, और यहाँ फिर अल्लाह ताला ने उसको ईमान की तौफीक अता फरमा दी, और अपने घर आने की तौफीक अता फरमा दी, अपना नाम चबने की तौफीक अता फरमा दी, जब ये नालायकी का काम करता है तो मुझे इस पर गम और सदमा होता है। बादशाही बादशाही क्यों नहीं था कि इसकी जो ईगल है वो बादशाह के यहाँ बैठता था, और बादशाह उसको यहां बिठाकर अपनी निगाहों से उसके अंदर हिम्मत पैदा करता था, जिससे वो जो बादशाही को जब वो छोड़ते थे तो वो लाइन पर अटैक करता था, वो खरगोश नहीं मारता था, वो लाइन पर अटैक करता था क्योंकि बादशाह से वो हौसला देता था। मैं और आप मेरी रात की रूहों ने अल्लाह ताला की ज़ियारत की है, हलस्तों में अबरी को अल्लाह ने अपनी ज़ियारत कराई, हमें इतना हौसला दिया है कि देखो मेरी ज़ियारत करके तुम जमीन पर जा रहे हो, और फिर जमीन पर जाने के बाद हमने तुम्हें अपने पैगंबर के आशिकों के लिए चुन लिया और तुम्हें कलमे की तौफीक दे दी और नमाज रोजे की भी तौफीक दे दी। तो मौलाना रूमी फरमाते हैं कि अगर वो जिसके पास कलमा नहीं है वो अगर बुराई और गुनाह का काम करे मुझे गम नहीं है, इसलिए कहा है ही चमकाता ना, उसने सूरज से दुश्मनी की है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना जाए सूरज से दुश्मनी की, लगे जब दुश्मनी की है तो वो ऐसे ही काम करेगा, वो खैर और अच्छे काम थोड़ी करेगा। डार्कनेस में रहने वाला ऐसे अच्छे काम की कैसे उम्मीद कर सकता है, मुझे बताए, जो डार्कनेस में रहता हो अंधेरी में रहता हो उसको अच्छाई बुराई की तो तमीज भी नहीं है, अच्छा बुरा क्या है, अच्छाई बुराई की तमीज तो रोशनी से होती है कि ये कैसा है, ये चीज कैसी, ये चीज कैसी। कार्टून के बारे में मुझे कोई खबर नहीं, लेकिन जिनको ईमान की अल्लाह ने रोशनी अता फरमा दी, जिनको अपनी ज़ियारत करने की जमीन पर भेजा है, फिर अल्लाह ने कलमे की तौफीक दे दी, फिर नमाज रोजे आज उम्र की भी तौफीक अता फरमा दी। फरमाया जब ये गुनाह करता है अल्लाह को नाराज करता है, ये चमकाने वाले काम करता है डाकनेस वाले काम करता है, फरमाया मुझे उस पर हम और सदमा होता है, मुझे उस पर दरखफा शरफ दर कबूत बादशाह चबूत मुझे अब इस पर होता, उस पर हम नहीं। तो मेरे शेख फरमा कहते थे कि इधर उसने असल में नजरे उधर हसीनों को देखता है, आंख महफूज रही है, दिल महफूज रही, जबान महफूज रही, कान महफूज रही, और इधर कहते हैं मैं वाला का तालिम हूं। इधर है उसने असल पर नजरे उधर हसीनों को देखता है, ये कितना मारूब है जो ताइब कमा रहा है, कमा कर दबा रहा है, इधर मस्जिद से अनमानात लेकर जाता है, उधर मुंह से गलत बात निकाली नूर खत्म कर दिया, आंख से गलत देखा नूर खत्म कर दिया, कान से गलत बात सुनी नूर खत्म कर दिया, जबान से गलत बात कही नूर खत्म कर दिया, क्योंकि सबसे पहले गुनाह का असर ही होता है कि इबादत का नूर छीना जाता है, सबसे पहले ही होता है, उसके अनमानात छीन लेते हैं, उसके बाद फिर इबादत से भी महरूम कर देते, भाई ये लायक नहीं है ये हमारे दरबार में आए, हम दरबार में लाते हैं और ये क्या करता है, यहाँ आता है तो हमारा मुति अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा है, वहां जाता है तो नफ्स और शैतान को बड़ा बनाता है, माशरे और उसको बड़ा बनाते हैं, एनवायरमेंट को कहते हैं एनवायरमेंट ऐसा है। आज लोग कहते हैं जी एनवायरमेंट क्या करें, एनवायरमेंट ऐसा है, ये कोई उजर नहीं है, अगर ये उजर होता तो यूसुफ सलाम भी पेश कर देता, अल्लाह में एनवायरमेंट ऐसा था मैं क्या करता, मैं नहीं हूं तेरी पना, सबसे पहले ऊपर रब्ता किया। मुफस्सरीन ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि शैतान ने जब अल्लाह ताला के सामने ये कहा लातेन्नहु मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, मैं इस इंसान के आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, यानी चारों तरफ से मैं इसको गुमराह करने की कोशिश करूंगा इंसान को। या ऊपर का बयान भी मुनफोकिम ने कहा कि ऊपर से आऊंगा, ऊपर का रास्ता अल्लाह ने अपने लिए साफ रखा है कि बंदा मुझे पुकारेगा मैं उसकी ऐसी रेस्क्यू करूंगा कि गुनाहों के माहौल में से निकालकर उसको पाक कर दूंगा, रेस्क्यू करते जैसे यूसुफ सलाम कैसे माहौल में गुनाहों ने घेरा हुआ था, इसलिए नाम नहीं लेकर गया कुरान ने, रबी कहा, हालांकि कह देते रबत जुलेखा या जो भी उसका नाम था, इमरत अजीज रबत इमरत अजीज फसाद बलायन के बाद से मुख्तसर जुमला जो है वो अफसा होता है बनिस्बत दूसरे की, लेकिन यहाँ कुरान ने पूरी बात की कि फिसलाया यूसुफ को उस औरत ने जिसके घर में यूसुफ रहता था, इतनी लंबी बात की माहौल बताने के लिए कि कैसा एनवायरमेंट था, गुनाह ने घेर लिया हमारे यूसुफ को और तालों के अंदर ताले लगाए, सारा दरवाजे 7 डोर्स लॉक्ड, फिर कहता है तलाक चल खुदा कर मेरे साथ का नमाज अल्लाह, फिर रब्ता किया टेलीफोन हो गया। हजरत आदमी फरमाते हैं लोग कहते हैं उसे गुनाह नहीं छोड़ते, तुम दरे मौला पर आकर गिर के देखो कैसे गुनाह नहीं छोड़ते तुमसे, क्या नफ्स और शैतान खुदा से ज्यादा ताकतवर है, तुमने पुकारा कब दिल के अंदर से मजे लगा हुआ है, उस मजे मजे न छोड़ जाए। अगर दिल के निहार खाने से मौला को पुकारा होता तो फिर मौला कैसे तुम्हारी मदद न करते। फरमाते हैं जो खैरी बस्ती गुनाह नहीं छोड़ते रोना शुरू कर दे, मौला के सामने रोना शुरू, अल्लाह मैं क्या करूं, आ मुझे बचा ले, नफ्स शैतान मुझे मार के मुझे बचा लीजिए। कहा कि देखो खुदा कैसे मदद फरमाएंगे, कैसे रेस्क्यू करेंगे, कैसे तुम्हें नफ्स शैतान से किस तरह बचाएंगे। कोई एक बात है, हजारों ऐसी मिसालें। यूसुफ सलाम तो सलाम को देखो बस तरह का बात, दूसरा काम क्या किया, दौड़े कोशिश की, स्ट्रगल। आज गुना छोड़ने की स्ट्रगल नहीं करते। वजीफा, अगर कोई वजीफा है मैं वजीफा पढ़ू गुना छोड़ दे, वैसे का वजीफा स्ट्रगल है। उल्टा तकवे का माना यह है कि गुना से बचने की कोशिश, गुना से बचने की कोशिश का जो नाम तकवा है। कोशिश करे बस, कुछ करना आपका काम है। किसी भी गुना की आदत है, छोटा सा गुना उसको मामूली ना समझे, छोटा छोटा नहीं है, ये आदत बड़ी खतरनाक है। अगर मेरे शेख फरमाते थे गुनाह की आदत ना मरने दो, जल्दी छोड़ दो उसको, अगर आदत पड़ जाएगी तो फिर दुनिया में उस आदत को कोई नहीं छुड़ा सकता, फिर जहन्नम की आग उसको छुड़ाएगी, फिर यहाँ नहीं होगा वहां होगा। इसलिए आदत ना पड़ने दो। किसी शेख की जब आदत पड़ जाती है तो फिर वो छोड़ती नहीं है, फिर इंसान हजार कोशिश करता है तो वो ऐसा दरख्त और ऐसा ट्री बन जाता है और कांटेदार ट्री कि इंसान उसको उखाड़ नहीं सकता। इसलिए आदत ना पड़ने दो, अल्लाह के सामने रहो, ये कोशिश, ये कोशिश की। पहले अल्लाह को पुकारा, फिर स्ट्रगल, सारे दरवाजे खुल गए, दौर खुलते चले गए। हमारे दारुलूम देवबंद में एक वाक्या लिखा है, एक अफगानिस्तान या दूसरा पठान इलाके का एक खूबसूरत तालिबे इल्म था, वो किसी गांव में हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ाई का जमाना, उस जमाने वो कहीं वहां से आता था तो किसी एक बदकार औरत की उस पर नजर पड़ गई, तो उसने उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा खूबसूरत है, लाल टमाटर की तरह इसके गाल है, मोटा ताजा है, इसके साथ में गुनाह करती, उन्हें सकीम बनाई, वकर किया मकर और सकीम बनाई, तो उसने कल और बचाए, मेरे घर में सांप आ गए, सांप आ गए। अब मौलवी लोग जो होते हैं बड़े नरम दिल होते हैं, जल्दी से मदद के लिए मांग पड़ते हैं, सिखाया भी जाता है दरसगाहों में, सिखाते हैं दूसरों की इमदाद करना, ये करना वो करना। जितने मौलवी हजरात इन खिदमत के मामले में कोई भी नहीं होता है, याद रखो, हमने खुद सुना हजरत शाह अब्राहम लख साहब रहमतुल्लाह अलैह से, हजरत शाह अब्राहम लख साहब थानवी रहमतुल्लाह खलीफा था, आप में से बहुत सारे ज्यारत की हुई, इनके वारिस साहब बहुत बड़े वकील थे हिंदुस्तान में, लायर थे बहुत बड़े, और एक नवाब भी थे, जमीने थी, बहुत माल जदाद फरमाती है। और शहर ने सुनाया कि और उनके बाकी जो भाई थे वो इंग्लिश तालीम हासिल करते थे और ये मदरसे में पढ़ते थे। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने हदीस शरीफ पढ़ी, और थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तालबिल्मी में फरमाया कि ये साहिब निस्बत है, तालबिल्मी में फरमाया था साहिब निस्बत, अभी तालबिल्म है, उस वक्त अल्लाह ने विलायत दे दी थी। तो जब घर में आते हैं तो उनके वालिद साहब जब बूढ़े हो गए तो पानी मंगवाते किसी बेटे, पानी ला दो, चूंकि घर में नौकर बहुत थे सर्वेंट, तो कहता चलो बाबा को पानी दो, जाओ बाबा बाबा को पानी दो, तो वो लाकर जो सर्वेंट का पानी पेश कर देता। इसको भी जो भी पढ़ते थे तालीम, लेकिन ये जब छुट्टी में आते हैं तगरीब से कहते हैं कि वाली साहब पानी दो, तो कभी नौकर से नहीं कहते थे बल्कि खुद लाकर पेश करते थे कि ये बाप की खिदमत करना मेरे लिए सआदत और निजात का जरिया है। खैर मौली साहब अंदर चले गए, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, आप देखो मेरे साथ गुनाह कर, सब घबरा गया भाई, अगर नहीं करेगा तो मैं फोन कर दूंगी, देखो मेरे घर में घुस गया, ये है वो है। मेरे साथ ये करना चाहता था, वो करना चाहता था, सब लोग मारेंगे तुझे। अब अल्लाह को पुकार, अल्लाह भाई क्या करो, क्या करो। फसिया, फिर अल्लाह ने दिल में बात डाली है, मुझे पेशाब आना है, पेशाब करना है, तो वॉशरूम बताया। उस जमाने में वॉशरूम ऐसे नहीं होते थे आज की तरह, वहीं पर गंदगी भी होती थी, तो उसने वो जो गंदगी पड़ी थी वो अपने ऊपर मल ली, अपने ऊपर मल ली। और जब वो बाहर निकला तो उसे और उसको देखा तो बड़ी करात में टोटा आ जाओ अगले यहां से, क्या गंदा आप गली। खैर बाहर आया करने के बाद शहर पर गए, गरीब आदमी था, गरीबदार बिलम थे, एक ही जोड़ा था उसके पास, उसने धोया वाहन, जब खुश हो गया, कुछ बेहतर हो गया, पहले के काबिल हो गया, तो पैर कर सबक पढ़ने के लिए दार लूम पहुंचे। अदर शेख गरीब रहमतुल्लाह ने सबक पढ़ा रहे थे, तो जब वो लेट आया तो आकर पीछे बैठ गया, अदर सबक रोक दिया, बुरबाया अभी कौन है जो अभी आया, काजी खड़े हो गए। उन्होंने कहा तूने आज कौन सी ऐसी खुशबू लगाई है कि पूरा दल हदीस में गया है। उनका दर नहीं मैम, वो रोने लगा, वो ने समझा शायद समय ला रही, गंदगी की समय ला रही, तो उन्होंने फिर सा बयान किया। उनका नहीं हजरत रोने लगे, कहा खुदा की कसम इन साजों से पूछ लो, तेरे जिस्म से जन्नत की खुशबू आ रही है। तो उस अतंखाना ने शैतान ने कहा मैं हर तरफ से हमला करूंगा, लेकिन ऊपर का जिक्र नहीं किया, बर्बाद ऊपर से नहीं आ सकता, ऊपर का रास्ता हमने बंदे के लिए रखा है, हमें ये पुकारेगा, हम तेरे चुंगल से और तेरी पकड़ से इस इंसान को बचाएंगे। तो मौलाना रूमी फरमाते हैं कि ये जो हमारी दूरी है अल्लाह ताला से, ये इस नफ्स की वजह से। तो मूसा सलाम ने कहा कि अल्लाह मैं आपके कैसे करीब और आ सकता हूँ, फरमाया दाइन नफ्स अबतवाल, अपने नफ्स को बीच में से निकाल दे, हमारा रास्ता खुला है, नफ्स निकाल दे। ये नफ्स है, इस नफ्स के मिटाने का नाम ही तसव्वुफ है, यही बुजुर्गों के पास जाने की मेहनत है। अल्लाह वालों के पास जो जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि नफ्स मिट जाए, क्योंकि इंसान खुद नहीं मिटा पाता, इसलिए तस्किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का तस्किया फरमाते थे। अब देखते हैं कि साहबी आए और कहा कि जी मुझे आदत है बुराई करने की, आप मुझे इजाजत दे दीजिए। साहबी बहुत सादा थे, अपनी बीमारी का इजहार कर देते थे, हाँ जामा बयान नहीं करते, हम बुजुर्गों बहुत फजाइल बयान करते। यानी हमारी मिसाल पता क्या है, एक आदमी डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर साहब मुझे भूख भी बड़ी अच्छी लगती है, नींद भी बहुत अच्छी आती है, खाना भी खा जा रहा है, आंखें भी ठीक है, सब है। डॉक्टर ने कहा फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, कम बाहर जा तो अपना काम कर। आज हमारा हाल ये है कि बुजुर्गों से ताल्लुक तो पता है क्या करते हैं जी, मैं ताज्जुद पढ़ना हूँ, पांचम नमाज पढ़ता हूँ, हसन हज उमरे करता हूँ, तो बुजुर्ग क्या कहेगा, भाई तू तो वली अल्लाह बना हुआ है, फिर हमारे साथ ताल्लुक की क्या जरूरत है। अपने रहनसों को बयान नहीं करते, साहबा में ये तक और मदद प्यार कर देते, हजरत ये ऐसे हो रहा है, तो ये साहबा अस्सु से तकल्लुफ नहीं था, हम भी हर चीज का इजहार कर देते थे, इलाज हो जाता था। क्योंकि जो सालिक जो मोमी अपनी मातृ बीमारी किसी से मुआरिस से बयान नहीं करेगा तो इल्म गैब नहीं है, कहते खुद ही बुजुर्गों को पता चल जाए, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कोई अकीदा नहीं इल्म गैब का। आपको बताना होगा कि मेरे अंदर ये खामी है, ये कमी है, मैं इसको कैसे दूर करूँ, आपको इसका इलाज बताएंगे। अजर खान मीर अहमदुल्ला को लिखा करते थे, डॉक्टर वैसे करता हूँ मैं क्या करूँ, इलाज बता देंगे तो वैसे कर। एक खातून मुल्तान में एक खातून थी, उनके शौहर बड़े सख्त थे, बड़ी सख्ती भी करते थे, कभी मारते भी थे। तो उन्होंने वादत थानवी रहमतुल्लाह से मुरीद थी, पहले से मुरीद थी, यानी शादी से पहले अपने वालद की इजाजत से मुरीद को के किसी से बैत होने के लिए वालद की इजाजत चाहिए या भाई की इजाजत चाहिए या शौहर की इजाजत चाहिए, ताकि शब्दों का मैदान ना। तो आदर ने लिखा कि भाई तुम तस्लीम कर लिया करो, गिन तुम्हारी गलती है, तस्लीम कर लिया करो, उस औरत से कहा और माफी मांग लिया करो, या मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। और उनकी उन्होंने यही करती है, जब वो करते हो तुमने ये क्या हो? माफ कर दे मुझसे गलती हो गई, हाथ मान लेती और हाथ पका मानती, जो वीर साहब की विदायत थी तो हाथ मान लेती। पहले हाथ बंधवा देती है बंदे के। इसलिए वो किसी ने कहा, मुझे किसी खातून ने कॉलेज से किसी लड़की ने खत लिखा कि यह हमें टेढ़ी टेढ़ी पसरी से क्यों पैदा किया गया है। मैंने किसी चीज को किसी पोल को सीधा रखने के लिए उसकी जो वायर है ना साथ सीधा रखो, वो टेढ़ी होती है। ये इन मर्दों को सीधा रखने के लिए अल्लाह ने टेढ़ा बनाया इनको, वरना पता नहीं आते भी क्या थे, कैसे दावे करता। आप कोई दावा नहीं कर सकता। हजरत खान में रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमारे दौर में एक थानेदार था, थाने इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर कहा कि उसको लोग नहीं डरते थे, लेकिन वो अपनी बीवी से डरता था। जब घर जाता तो चूहा बन जाता बिल्कुल, हाँ सारी उसकी पुलिस खत्म हो जाती है ना। तो बड़े हैरान होते। अच्छा बाद में उनको एहसास होता कि यार गलती तो मेरी थी और मैंने उसको कहा नहीं, अगर मान भी लिया तो माफ कर दे मुझसे गलती हो गई। दो चार दस किस्सा पेश आया। तो एक दिन अपनी बीवी को बिठाया, उन्होंने कहा क्या बात है भाई, गलती मेरी होती है, औरतों की तो यह आदत है कि अगर उनकी गलती भी हो तो मानती नहीं है, या तो गलती भी नहीं करती फिर भी तो हाथ जोड़ लेती है, मेरे पांव पकड़ लेती है, मुझसे माफी मांगती है, ये क्या बात है। और कहते मेरे एक मुर्शिद है, मैं उनसे अपना इलाज रूहानी कराती हूँ। तो मैं उनको लिखा, मैं क्या करूँ, कहा देखो बेटा सबर से काम लो और तू माफी मांग लिया कर। मुझे भी बताओ भाई वो कौन मुर्शिद है। उन्होंने कहा वो थाना भवन में रहते हैं। तो दोनों छुट्टियां जब हुई, जैसे अगर वो स्कूल पर आते थे तो छुट्टियों के अंदर दोनों मियां बीवी थाना भवन गए, हजरत की सोल में आए और फिर हजरत से उन्हें खिलाफत भी मिली और मुल्तान उसके राहरे में हाजी शरीफ साहब के नाम से बहुत ऊंची हजरत और रफा में से गुजरे हैं। तो बयान कर रहे थे हजरत मेरे दिल में आता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं। अब रसूलुल्लाह ने अपने नफ्स को मिटाया, फरमाया देख तेरी बहन है, तेरी बिंदी है, बीवी है, माँ है, उनका जी सारे रिश्ते मौजूद है। उससे अगर यही कोई बुराई करना चाहे जो तू किसी से चाह रहा है तो तेरा क्या ख्याल होगा। तो वो ऐसे गुस्से में आ गया और तलवार पर हार हजर इसके साथ उसकी गर्दन कलम कर दूंगा जो पूरी नजर से मेरी बीवी बेटी बहन माँ को देखेगा। कहा कि जिसके साथ तू करना चाहता है वो भी तो किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की खाला है। साहबी फरमाते हैं कि मुझे पसीना आ गया, नदामत शर्म से पसीना टपकने लगा और मैं बिल्कुल साकित हो ऐसे लगा जैसे मैं जिंदा ही नहीं हूँ। कहा कि रसूलुल्लाह ने मेरे सीने पर जोर से हाथ मारा, अल्लाह कलबाहू वहासिन फरजाहू फिर जम्बाऊ, अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, इसके गुनाह को माफ फरमा दे, इसकी शर्मगाहगी फात कर। कहते 70 साल हो गए, 70 इयर्स इस किस्से के हो गए, मेरे दिल में कभी बुराई का ख्याल भी नहीं आया। ये नफ्स को मिटाया उस सलफ ने। वल्लाह रूही फरमाते जब तक ये नफ्स नहीं मिटेगा ये अल्लाह का गुर्ब महसूस नहीं होगा। हालांकि अल्लाह बहुत करीब है, ना नकरीब बिन हबल वरी। इसलिए मौला रूमी फरमाते हैं, दुआ भी मांगते हैं कि बात चुनी नजदीक के दूर मतूर है, अल्लाह इतनी नजदीक के बावजूद मैं आपसे दूर हो रहा हूँ इस नफ्स बदमाश की वजह से। फरमाते हैं दर चुनी तारीख के बफरस्त नूर, ए अल्लाह इस तारीख नफ्स में अपने नूर को डाल दीजिए ताकि रोशन हो जाए, जब ये रोशन हो जाएगा तो खैर शर को समझेगा। इसलिए कि ये जुल्मत है, नफ्स पूरे का पूरा जुल्मत और अंधेरा है। जब इंसान अल्लाह अल्लाह करता है, जिक्र अस्कार करता है, तकवा इख्तियार करता है, फिर ये मुनव्वर होता है, इसमें लाइट आती है, इसमें रोशनी आती है। इसलिए मौलाना रूमी फरमाते हैं, बस आखिरी बात करके खत्म करता हूं, मौलाना रूमी फरमाते हैं कि नारे शहबत चे कुशल, कि शहबत की आग कैसे खत्म होगी। फरमाए नूर खुदा, अल्लाह के नूर को हासिल कर, अल्लाह के नूर को हासिल कर, जितना नूर हासिल करोगे नारे शहबत बुझती चली जाएगी। नूर इब्राहिम साज उस्ता, फिर मिसाल देते हैं हत इब्राहिम सलाम को देखो, इतना नूर हासिल कर लिया था, जब आग में डाले गए तो आग में ठंडी हो गई। इब्राहिम सलाम का नूर कैसा था, आग को ठंडा कर दिया। तो अगर तुम नूर हासिल करोगे तो तुम्हारी नफ्स में जो शहवत की आग है, गजब की आग है, ठंडी नहीं होगी। लेकिन नूर हासिल करो, نور حاصل کرنے کے لیے مثبت اور منفی، پوزیٹیو نیگیٹو اللہ نے ذرائع دی ہے، رمضان میں پوزیٹیو ذریعہ ہے، حج کرنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا پوزیٹیو ہے، اور کھلا سے بچنا، اس کی محنت کرنا یہ نیگیٹو ذریعہ ہے جس سے نور حاصل ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ نور اس سے حاصل ہوتا ہے، جن بات ہے سب سے زیادہ نور اس سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ایک دفعہ انسان کے قلب میں برائی آتی ہے اور ایک جذبہ گناہ کا پیدا ہوتا ہے اور آدمی ہمت کر کے اس پر عمل نہیں کرتا تو پورے کے پورے جذبے کو اللہ تعالیٰ نور میں تبدیل فرما دیتے ہیں، یہ عجیب ہے، پورے کا پورا نور، جتنا بڑا تقاضا آئے گا اتنا بڑا نور حاصل ہو جائے گا، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المحارم تکل عبد الناس، کہ حرام چیزوں کو چھوڑ دے تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے، یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ نفس کے تقاضے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اگر کسی ایک تقاضے پر عمل کر لیں نمازوں کا نور، حج کا نور سارے انوارات کو عارض کر دیتا ہے، جب اس تقاضے کو آدمی روکتا ہے اختیار کرتا ہے پھر اسی تقاضے کو اللہ تعالیٰ نور میں تبدیل فرما دیتی ہے، عجیب بات ہے، اور مولانا رومی نے مثال بھی دی، کہا کہ تعجب جو کرتے ہو تمہیں تعجب ہوتا ہے، تو حیران ہوتے ہیں کہ امیزنگ تھنگ ہے کہ برائی نور کیسے بدل بدل گئی، اور میں دیکھتے نہیں کہ تم جو ہے فرٹیلائزر ڈالتے ہو، فرٹیلائزر کیا ہوتا ہے؟ پیشاب ہی تو ہوتا ہے، رجس چیز ہوتی ہے، کہہ بھینس کا آتا ہے تم اس کو کھیت میں ڈالتے ہو، پانی لگاتے ہو، سورج لگتا ہے، وہ کیسے پاک ہو جاتا ہے، اسی سے درخت اگ رہا ہے وہ پاک ہے، پھول آ رہا ہے پاک ہے، پھل آ رہا ہے پاک ہے، کراس آ رہی ہے پاک ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت تو ہم دیکھتے ہیں کہ نجس چیز کو پاک میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو ہمارا جو نجس تقاضا ہے، جو نجس ڈیزائر ہے، جب ہم اللہ کے لیے اس کو روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو نور میں کیوں تبدیل نہیں کر سکتے؟ کہ اللہ قدرت میں نہیں ہے، جتنا بڑا تقاضا ہے اتنا بڑے نور ہو جائے گا، لیکن اس کو روکنے سے کا نام تقوا، یہ نیگیٹو نور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے، یہ جب دونوں ملتے نا پازیٹیو نیگیٹو تار ملتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، پھر دل روشن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کا دل محسوس کرتا ہے، یہ کون آیا میرے دل میں کہ نیمی پڑ گئی لو شمع میں فلکی، پتنگوں کے بزرنے لگی چنگاریاں دل کی، حضرت جو ہے خواجہ مجذوب صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت مجھے کیسے پتا چلے گا میں اللہ والا بن گیا، میرے دل میں نسبت آ گئی، میرے دل میں نسبت آ گئی کیسے پتا چلے گا؟ میں جب تم مالک ہوئے تھے محلے داروں سے پوچھا تھا، کیوں بھائی؟ جب مالک ہوتا ہے تو محلے دار پوچھتے، یار میں مالک ہوں یا نہیں، خود انسان کے اندر خاص قسم کی جان آ جاتی، اس سے پہلے جن سے ڈرتا ہے پھر کہتا ابھی آؤ نا میرے سامنے میں دیکھتا ہوں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو کسی سے ڈرتا ہے، لیکن جب پاری ہو جاتا ہے تو پھر سینہ تان کی پھرتا ہے، فرمایا خود ہی تجھے پتا چل جائے گا کہ تو روحانی والی ہو گیا، تو جب حضرت تھانوی کے پاس کچھ عرصہ رہے تو پھر ایک دن کہا کہ حضرت پہلے کی بجلی سی کوندی، اس کی آگے خبر نہیں ہے، جو پہلو کو دیکھتا ہوں دل نہیں ہے جگر نہیں ہے، دیکھتا ہوں سب کچھ مولا پر فدا ہے، اب ہم وقت اللہ پر فدا ہونے کا ایسا جذبہ قلب میں آ گیا کہ ایسے لگتا ہے کہ بھائی میرے اندر کیسی تبدیلی آ گئی، پہلے ایسی سوچ میں نہیں تھی، اب دل چاہتا ہے کہ ہم وقت اللہ تعالیٰ پر میں فدا رہوں، تو بس میرے دوستو اللہ تعالیٰ تو ہمارے قریب ہے، ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے، وہ چیز جو ہمارے اللہ کے درمیان رکاوٹ ہے نفس، اس کو مٹانے کی ضرورت ہے، خود بھی ہمت کیجئے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، ورنہ صحبت میں نہ بیٹھے تو ان کی باتیں پڑھیں، ان کی باتیں سنیں، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ کتاب پڑھنا کسی بزرگ کی ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، قیم الامت تھانوی فرماتے ہیں، اسی وجہ سے محدثین نے لکھا ہے کہ جو حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے اس کو صحابہ کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ کی ذات اقدس کی صحبت تو نہیں ہے لیکن الفاظ مقدسہ کی صحبت مل رہی ہے، تو لہذا اب کسی بزرگ اگر کوئی نہیں ملتا تو کسی بزرگ کی کتاب کا مطالعہ شروع کر دو، 20-25 منٹ روزانہ پڑھو، ایسے ہوگا کہ جیسے اس بزرگ کی صحبت میں بیٹھے ہو، اور خود بھی اس نفس کے خلاف اور اس کو مٹانے کی کوشش کرتے رہو اور اللہ سے مانگتے بھی رہو. اللہ مات نفسی تقواہ وزن کا انت خیر من زکاہ انت ولی رہو مولا. رسول اللہ نے دعا سکھائی ہے اللہ میرے نفس کو پاک کر دیجئے, اس کا دروازہ بھی کٹ کٹاتے رہو. جب یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر ایک دن یہ دل مولا کو ہو جاتا ہے لسان صاحب نسبت اور اللہ کے قرب کو محسوس کرتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.